لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله والعنة الله على أعدائهم آل الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. مومنین، یہ سورہ فاطر کا یہ آخری سلسلہ ہے آج جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا، یہ 38 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے، بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر غائب شے سے واقف ہے، بلکہ وہ تو سینوں میں چھپی ہوئے راز تک جانتا ہے. اس سے پہلے جو آیت ہوئی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو مومن ان کا کیا اجر ہے اور جو لوگ کافر ان کو کتنا عذاب دیا جائے گا، پڑھ چکے ہیں گزشتہ مجلس میں. تو اسی کے ذیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان زمین کی جتنی بھی غیب کی باتیں سب معلوم ہیں، اور جو ہمارے سینوں میں چھپا ہے وہ بھی اللہ جانتا. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون کس رستے میں چل رہا ہے، کس کے ساتھ کیا اس کا سلوک رہے گا قیامت کے دن، وہ اچھی طرح جانتا ہے. تو ہم کو چاہے کہ ہمارے پسینوں کو ہم پاک کریں، دکھاوے کا مطلب نہیں بلکہ دل کا مطلب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. تو ہمیشہ ہم کو ہمارے جو سینوں میں جو چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، برے خیال تو نہیں آ رہے ہیں، شباب تو نہیں آ رہے ہیں، کفر کے خیال تو نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اصلی جنگ تو ہماری اندر چلتی ہے. تو ہمیشہ ہم کو چوکنا ہونا چاہیے. اس میں قرآن کی بہت آیت ہے، شیطان کی وسوسے سے پیدا ہو تو فوراً ہم اللہ سب کو پکار ہیں، اس کی مدد پکار ہے. ایسا نہیں کہ شیطان نے حملہ کرا تو چھوڑ دیں گا حملہ، تو کم پہ حملہ کرتا رہے، نہیں، لڑنا ہے شیطان سے، استغفار کرنا ہے، خدا کا پکارنا ہے. یہ تو جہاد اکبر ہے تاکہ ہمارا قلب پاک رہے، کیونکہ جو اللہ کے پاس، قرآن میں آیا تھا کہ جو قلب سلیم لے کے آئے گا اللہ کے پاس وہ بچ جائے گا. قلب سلیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کو پاک کریں. جو اللہ نے کہہ دیا کہ انہو علیم بذات الصدور، مطلب دلوں کے حال جانتا، تو قلب سلیم ہونا چاہیے. یہ کہ شیطانی فوج ہمیشہ ہمارے قلب کو آلودہ کرتی رہتی ہیں، وسوسے ڈال کے، شبہ ڈال کے، غصہ ڈال کے، ہر طرح کا کی ریاکاری ڈال کے، ہر طرح سے اس کو آلودہ کرتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس کو ہمیشہ جنگ چلتی رہے، کبھی ایسا لگے گا جنگ میں ہار رہے ہیں، گریا کر کونے میں چلے جائیں، مایوس نہ ہو، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پسند آتا ہے. اگر ہم جنگ میں ہار رہے ہیں شیطان سے تو پکار رہے ہیں، محبوب مدد کرے گا، لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو اللہ کو پسند نہیں آتا. کبھی ہم ہار بھی جائیں گے پھر گر رہا، اللہ پھر اٹھائے گا، ایسا نہیں ہے، چھوڑا نہیں اللہ کی رسی کو. وعد اسم اللہ حبل اللہ جمین، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑا رہا ہے نا. یہ اللہ کی رسی اسی سے پکڑائی جاتی ہے کہ قلب سلیم رہے، پاک ہے. کیا حبل اللہ قرآن حکیم اور اللہ ان کو پکڑا رہا ہے. وہ الذی جعلکم خلفاء فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. وہی تو جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے، اب جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے بارگاہ میں سوائے غضب کے کسی اور شے کا اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کو اور زیادہ بڑھا دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہی تو جس نے تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، وہی ہے صرف، تو اپنی توحید بتا رہا ہے جو تم خلیفہ بنے بیٹھے ہو اس دنیا میں میری وجہ سے، تم مجھے پہچانو. اور کس نے بنایا خلیفہ؟ اس نے بنایا. کیا مطلب ہے خلیفہ بنانے کا؟ نظام نے سمجھایا خلیفہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو یہ زمین کا وارث بنا دیا ہے، کہ ہم کو اتنی صلاحیت دیے کہ ہمیں عقل ہے اور ذہن ہے اور ہاتھ اور پاؤں دیے اور ہر طرح سے ہم کو ہدایت دی تاکہ ہم اس زمین میں آرام سے رہیں. یہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا نا یہ سب چیز ہم نے تمہارے قابو میں کر دی ہے. ہر چیز اگر آپ دیکھیں زمین کے اتنی نرم ہوتی ہے, آرام سے آپ جو چاہو کر لو, کھیتی کر لو, جوت لو زمین کو, یہ سب چیز اللہ کی طرف سے ہے نا. پھر آپ عقل دی کہ آپ جو چاہیں کریں زمین میں, ہر چیز کو آپ کے تابع کر دیا. تو یہ چیز اللہ نے کری ہے, ورنہ نہ تو ہمارے بس کا تھا کہ زمین میں جی پاتے یا رہ پاتے یا کچھ کر پاتے. اللہ نے بنایا خلیفہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر کے انٹیلیجنس دیا ہے, ہر چیز دیے, ہر چیز کو تابع کر دیا ہے. آج ہر چیز انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور ہر چیز اس کے لیے آسانی سے ہو گئی ہے. اب اللہ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بنایا تو مجھے یاد کر, اب تو سرکش مت ہو جانا مجھ سے, کیونکہ تجھے میری طرف لوٹ کے آنا ہے, لوٹ کے آنا اللہ کا. تو اللہ صاحب نے فرمایا کہ فن کفر آپ علیہ کفر ہو, جس نے کفر کرا تو اسی کے لیے کفر ہے. کہا اللہ نے کہا کہ کافر ہوا کفر اللہ کے سامنے صرف اللہ کا, کہ جو اللہ کافر کفر خدا کے سامنے صرف کافر کفر بارگاہ میں اللہ کو غصہ دلاتا ہے اور کافر کفر کی وجہ سے ان کے لیے نقصان ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان کو اللہ کا غضب ہوگا ان پہ, جنہوں نے کفر کرا اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور خسارہ ہے ان کے لیے. اس دنیا میں بھی غضب ہے اور اس دنیا میں بھی غضب ہے, اس دنیا میں بھی خسارہ ہے, اس دنیا میں بھی خسارہ ہے. یہاں کا خسارہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو کافروں کیا خسارہ, کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی, انگزائٹی, ڈپریشن, اڈکشن, وائلنس, ہر چیز کے شکار ہوتے ہیں. حالانکہ ہوتے ہیں اچھی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں, بڑے بڑے مکان کرتے ہیں, لیکن اندر سے جہنم چلتا رہتا ہے. یہ یہاں کا خسارہ ہے. وہاں کا خسارہ تو پھر ہی جہنم, اصلی جہنم, لیکن جہنم یہی شروع ہو جاتا ہے. گھروں میں صرف منوسیت اور جھگڑے اور شیطان کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھیں گیس کے اندر گروسری کی دکان میں شراب زیادہ بکتی ہے اور سبزیاں کم بکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل بے چین ہے. یہ اللہ کا یہی خسارہ شروع ہو گیا کہ شراب زیادہ بک رہی ہے, سبزی کم بک رہی ہے, کیونکہ پینا پڑتی ہے شراب. کہ اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے خسارے کے, نہ اللہ ہے نہ کچھ ہے. تو یہاں سے ہی خسارہ شروع ہو جاتا ہے, اللہ کا غضب بھی شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر بھی ہے. تو ہر چیز مومن کے لیے جنت ہی شروع ہو جاتی ہے, اللہ کی قربت ہی شروع ہو جاتی ہے. جب نماز پڑھتا ہے مومن تو بہشت میں ہوتا ہے, تو یہیں سے دونوں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. وہاں جا کے پیک ہو جائے گا, جب جائیں گے تو اللہ کے پاس تو جو چیز کی شروعات ہے اس کی انتہا وہاں ہے, لیکن شروعات ہی ہو جاتا ہے. قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرکاء کے بارے میں بات کر رہا ہے, جن کے شریک ہیں اس کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے. کیا فرما رہا اللہ؟ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو؟ اللہ کہتا کہ کہو ان سے کہ تم نے اپنے شریک کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, جو تمہارے ایسوسیٹ گارڈ بنا رکھے ہیں تم نے, دیکھا وہ؟ پھر اللہ فرماتا مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے, یہ آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے. اب پورے یونیورس دیکھ لو آپ, اب بتاؤ کون سا ٹکڑا یونیورس کا یا زمین کا کسی دوسرے خدا نے بنایا, یا آسمان میں کیا بنایا. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز یونیفارم ہے, یونیورس میں ہر چیز ایک جیسی ہے, ہر چیز ایک جیسی ہے, وہی سبسٹینس ہے, وہی کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن ہے, وہی ہے, وہی پیٹرن پورا چل رہا ہے ایٹمس کا موومنٹ کا, اور وہی مالیکولر سائنس ہر جگہ چل رہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا ہر ایک کو کہ یونیفارمٹی ہے. اگر کچھ الگ ہوتا تو کچھ الگ کچھ دکھتا, لیکن کچھ بھی الگ نہیں ہے نا. تو کہاں کچھ دکھ رہا ہے الگ تمہیں, کس کا بنا ہوا دوسرا تم کو دکھ رہا ہے؟ فزیکلی تم دیکھ لو کہ کیا الگ ہے, کیا کسی کا بنا ہوا ہے, کامن سینس کی بات. تو تم کو دکھتا کسی نے اور کری ہے خلقت. پھر میں آگے پڑھتا ہوں ان شاء اللہ. اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے دریافت کرو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہے. پھر کیا اللہ کہتا, कि ये तो तुमने देख लिया कि कहीं और किसी की शिरकत नहीं है अल्लाह की कायनात में तखलीक में, तो क्या हमने कुछ तहरीर लिख के दी है तुम्हें जिसमें लिखा है कि मेरे दूसरे भी शरीक शुरका है? कोई तहरीर नहीं है अल्लाह की कि उसने लिख के भेजा कि मेरी सल्तनत में कोई और भी शरीक है, कोई तहरीर अल्लाह की नहीं आई है, ना तो तहरीर आई है ना तुम उसको फिजिकल सेंस में देखते हो, तो फिर कहां से मसला शुरू हो रहा है? फिर आगे अल्लाह फरमाता नहीं ये जालिम लोग तो एक दूसरे से पर फरेब वादा किए जा रहे हैं, कि जालिम एक दूसरे से फरेब का वादा करता है। क्या करना जालिम लोग फरेब का वादा, ये भी सुन ले आप। जालिम कहते हैं कि ये जो फरिश्ते हैं, ये जो जिन्नात हैं या जो पैगंबरान हैं, ये अल्लाह के शरीक है, ये अल्लाह के शरीक है, और उनको और तो और ये स्टार्स होते हैं, ये भी इनमें इन भी ताकत है, और ये सबको पूछते हैं, ये सबको पूछते हैं, कहते हैं कि नहीं ये लोग गॉड तो नहीं है, हिंदू लोग कहते हैं ये परमेश्वर तो नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के साथ हैं, और ये बिल्कुल इनकी भी वैसी पूजा करो, ऐसी इबादत करो जैसे परमेश्वर की करो, हिंदू ही कहते हैं। दूसरों ने भी यही कहा कि देयर आर अदर गॉड्स, उनको गॉड कहते हैं, वो कहते हैं इनकी भी ऐसी इबादत करो जैसे कि रियल गॉड भी करते हो, क्यों करो? कहता हाँ ये क्रिएटर तो नहीं है, लेकिन ये लोग हमारी शिफात कर देंगे गॉड के सामने। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम किसी और का इबादत करोगे तो तुम्हारा ठिकाना से जहन्नम है, कोई शिफात किसी को कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने कुरान में दो बार कहा है कि अगर किसी ने अल्लाह का शिर्क कराया तो वो अल्लाह कहीं माफ़ी नहीं करेगा, दो बार आया कम से कम, कोई शिफात नहीं है, शिर्क कर लिया अल्लाह का कोई शिफात नहीं है, किसी और क्या कहे सजदा करा आपकी कोई शिफात नहीं है। तो ये तो अल्लाह ने कहा कि ये जो जालिम आपस में बात करते हैं ये सिर्फ फरेब का वादा है। इन्नल्लाह यमसुकु समावाती वल अर्द अन तज़ूला वलइन ज़ालता इन अमसकुहुमा मिन अहदिन मिन बादी इन्नहु काना हलीमन गफूरा। अब यह आयत का तर्जुमा इस तरीके से, यकीनन वो अल्लाह है जो आसमान और जमीन को थामे हुए कि वो अपनी जगह से हट ना जाए, और अगर वो हट जाए तो अल्लाह के बाद उन्हें कोई थाम भी नहीं सकेगा, बेशक अल्लाह बड़ा हिल वाला और बड़ा दरगुजर करने वाला है। अल्लाह सुब्हान तआला ने जमीन आसमान को थामे हुआ है ताकि वो अपनी जगह से हट ना जाए। मीजान ने क्या बताया इसकी इस तफसीर में कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कायनात बनाई, क्रिएट करी, लेकिन सिर्फ क्रिएट नहीं करी बल्कि उसका मैनेजमेंट भी करा, सही ना? अकेला मैनेजमेंट नहीं करा है, अकेली क्रिएट नहीं करी है, लेकिन क्या है कंटिन्यूस क्रिएशन है, कंटिन्यूस क्रिएशन है। अगर क्रिएशन होना बंद हो जाता है तो कायनात खत्म हो जाती है। अब जैसे दरख्त पैदा होते तो एक बार थोड़ी दरख्त पैदा होता है, बार बार दरख्त पैदा होते रहते हैं, बच्चे पैदा होते तो हमेशा पैदा होते हैं, स्टार्स भी कोई मर गया तो दूसरे स्टार पैदा होते थे, हर जगह न्यू क्रिएशन चल रहा है, हर जगह चल रहा है न्यू क्रिएशन। तो ये कैसे चल रहा है टू सस्टेन द यूनिवर्स, ये अल्लाह ने कहा कि इससे मुराद यही कि अल्लाह सुब्हान तआला ने एक बार बना के खामोश नहीं बैठा अल्लाह, बल्कि उस कायनात को मेंटेन करा हुआ है, उसको बरकरार करे हुए, अपनी खिलकत को लगातार जारी कर रखे। इन्नल्लाह यमसुकु समावाती वल अर्द अन तज़ूला, ताकि वो हट ना जाए ना खत्म ना हो जाए। जी फिर और कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने कही कि अगर वो हट भी गया तो सिवाय अल्लाह के फिर उसको वापस नहीं ला सकता कोई, अरे खुदा खासा ये खत्म होने लगती, ये अल्लाह कह रहा है कि खत्म होने लगती तो वापस वो पलट के वापस उस हालात में सिर्फ अल्लाह के कोई नहीं ला सकता। अल्लाह हो ये अल्लाह है मोमिनीन, और हम अपने नखरे दिखाते हैं अल्लाह के सामने, उसकी किताब नहीं पढ़ते, उसकी इताअत से दूर भाग। अल्लाह ताला ने हमारा खुदा सच्चा खुदा है मोमिनीन। ये मैंने कुछ नॉन मुस्लिम को ये आयत भेजी थी तो देखते रह गए इस आयत को कि क्या आयत है, नॉन मुस्लिम थे, ये कुरान की आयत भेजी थी, ये आयत है, देख के इंसान जो भौचक्का रह जाता कि मेरा परवरदिगार वो जो कि कायना तो थामे हुए है, यानी खिरकत पर खिरकत हो रही है, और अगर ये टूटने लगती तो उसके सिवा कोई मामूद नहीं, उसको वापिस थाम लेता। फिर क्या कहा इन्नहु काना हलीमन गफूरा, कहा वह हलीम भी है, हिल वाला है, बर्दाश्त करने वाला और बख्शने वाला है। क्या मतलब है इसका, वो बड़ा शफ़क़त करने वाला है, अल्लाह बड़ा शफ़क़त करने वाला है कि हम इतने गुनाह करते हैं, उसकी मासियत करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, गुनाह के जरा में मशगूल हैं। इंसानियत ने अल्लाह के वजूद को जुटला दिया, एथीस्ट हो गए दुनिया आजकल, वेस्ट तो आधा एथीस्ट हो गया। उसके बाद भी अल्लाह ने सबको साथ बर्दाश्त करे बैठा हुआ है, ये मतलब है इसका। तो आपकी कायनात में अभी भी उरस दे रहा है, अभी भी बारिश आ रही है, अभी भी गाय दूध दे रही है, अभी भी लोग मीट खा रहे हैं, हर चीज सब अल्लाह पैदा कर रहा है ना। गाय जो दूध दे रही है अल्लाह पैदा कर रहा है, मीट खा रहा है अल्लाह पैदा कर रहा है, अंडे खा रहा है अल्लाह पैदा कर रहा है, फल खा रहा है अल्लाह पैदा कर रहा है, सब अल्लाह कर रहा है। एथिस्ट के लिए भी हर एक के लिए अल्लाह कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब हो रहा है। क्यों? वो हलीम है, वो बर्दाश्त करे बैठा है, और वो बख्शने वाला के बंदे अभी भी तू मेरे तरफ पलट के आ जा, अभी भी तू पलट के आ जा, अभी तेरा इंतकाल नहीं हुआ है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, इमाम का जहूर हो रहा है, पूरी दुनिया ईमान लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम न तो किसी न अल्लाह चाहता है, न अंबिया चाहते हैं कोई जहन्नम में जाए, ये तो इंसान खुद अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। दुआ है कि मौला जल्दी जहूर करें ताकि वो दुनिया को जहन्नम से आजाद करें, एथिज्म के और फिस्क और फजूर के। दुआ है अल्लाह ताला, वो अक्सिमु बिल्लाह जहद ऐमान ही लइन जाअहुम नज़ीर लयकूनन अहदा मिन अहदिल उमम फलम्मा जाअहुम नज़ीर मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। ये लोग बड़ी सख्त कसम खाकर कहा करते थे कि अगर कोई नज़ीर यानी डराने वाला आया उनके आ गया होता तो ये दुनिया के हर दूसरी कौम से बढ़कर हिदायत याफ्ता होते, लेकिन जब डराने वाले यानी सरकार आए उनके पास तशरीफ लाए तो उनकी आमद पर सिर्फ उनकी नफरत बढ़ी। क्या हुआ? ये जो कुरैश थे कहा करते थे अहले किताब के बारे में, यहूद नसारा ने अपने पैगंबरों का कहना न माना, उनको कत्ल करा, बड़े ये लोग अच्छे नहीं थे। हम मक्का वालों के पास, हम कुरैश के पास कोई नबी आता तो हम सबसे ज्यादा फरमा बरदार होते, ये कहा करते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया कि ये लोग अक्सुम बिल्लाह जहदे, मैंने अल्लाह की कसम खाया कहते थे कि अगर हमारे पास कोई डराना वाला आया तो हम दूसरों ज्यादा बहुत ज्यादा हिदायत रफ्ता हो जाएंगे, लेकिन जब आया नजीर तो क्या हुआ? सिर्फ उनकी नफरत बढ़ी, सरकार से नफरत करी, सरकार को पत्थर मारे, ये हुआ उनके साथ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर असर हो रहा था। ये जो लोग थे मक्का के जो के कुरैश जो लेते थे 365 रुतों पर जो आता था चढ़ावा उसको बैठ के खाते थे, जो हज बिजनेस था वो खाते थे बैठ के, कहा कि ये सारे हमारे बुत चले जाएंगे तो हमारी कहां से कमाई होने वाली है। अपनी अपनी दुनिया के मफाद के लिए उन्होंने सरकार को झुटलाया, नफरत बढ़ाई। अब मोमिनी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अपने आपसे पूछता हूँ, दुनिया का मैं खुद भी अपने आपसे पूछता हूँ सवाल कि अगर हम कहते हैं कि आज हम मुला हमारे हाल है तो हम बहुत ज़्यादा हम बड़े मोमिन होने वाले हैं और हम ये कर देंगे मुला साहब, हम वो कर देंगे, क्या है वाकई ऐसा होगा क्या कि नहीं होगा? इनको सवाल हमसे कि हम अगर खुद कसमें खा रहे हैं कि मुला आपका जरूर हो गया तो हम तो ऐसी मदद करने वाले हो, हम तो ऐसा करने वाले, पता नहीं मुला हमारी हयात में आए कि नहीं आए, हमारी हयात एक बार हम कब्र में चले गए तो चले गए, पता नहीं कि हम रजत में वापस आए कि ना आए। हर एक इख्तियार में नहीं होगा कि वापस रजत में आए, खालिस मोमिन और खालिस कुफर आएंगे। तो अगर हम रजत में वापस ना आए और हमारा इंतकाल हो गया तो यही तो हमारी जिंदगी रही, यही हमारी मौला की नुसरत है, जो हमारी जो हयात जो इस वक्त है यही नुसरत है। ये शैतान के धोखे हैं, गए जब मौला आएंगे तो हम करेंगे, सब धोखा है शैतान का, हो सकता है उस वक्त और हम बदतर हो जाएं, जैसे इनका हुआ था, खुदा से पना मांगे। तो लब्बे लुबाब ये है कि आज हम फरमाबरदार हो जाए, यही बस हमारी हयात है। आज जो हमारा माल लिखा गया वो लिखा गया, आज जो अमल हो गया वो अमल हो गया, आज हमने अमल किया मौला मेहदी ने देख लिया हमारा अमल। आप कल की क्या बात करें, जहूर की बात करना छोड़ दें आप, आज की बात करें, जहूर की बात छोड़ दें आप, ये शैतान के धोखे हैं। अगर आज अमल अच्छा है, आज मौला को आपने खुश करा तो इंशाल्लाह जब मौला आएंगे तो हम साथ में होंगे, लेकिन अगर आज ही हमारा अमल गलत है तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ये सबके लिए ये आज हमारा अमल सही है, आज हमने कुरान पढ़ा, आज हमने हिफ्ज़ करा इसको, आज अल्लाह से मोहब्बत करी, आज सलात में मेराज मिली, आज हमने अच्छे काम करे। आज हमने जालिम के खिलाफ कहा तो हम सही रास्ते पे, ये हो गई हमारी मौला की नुसरत आज की, कल का छोड़ गया। इस्तकबारन फिल अर्दी व मकर सईय वला यहीकुल मकरू सईय इल्ला बि अहली फहल यनजुरून इल्ला सुन्नत अल अव्वलीन फलन तजिदु लि सुन्नत अल्लाह तब्दीला वलन तजिदु सुन्नत अल्लाह तहवीला। फिर क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हरकत है ये लोग। पहले तो कहा गया आएंगे तो हम बहुत ज्यादा हिदायत याफ्ता होंगे, जब आए नजीर सरकार आए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं बढ़ा। आगे क्या और क्या करते हैं लोग, ये जमीन में और ज्यादा इस्तकबार करने लगे, एरोगेंस दिखाया और बुरी चालें चलने लगे। कितना एरोगेंस दिखाया मक्का वालों ने, कितनी बुरी चालें चली, सरकार को कितना तंग करा। और ये नहीं, अब ये बात सिर्फ मक्का वालों की अल्लाह नहीं कर रहा है, बल्कि तमाम कुफ्फार की बात कर रहा है जो उन्होंने अपने अपने अंबिया से करा। फिर से पढ़ता हूँ तर्जुमा इंशाल्लाह। ये जमीन में और ज्यादा इस्तकबार करने लगे, वो बुरी चालें चलने लगे। वो बुरी चाल तो उसके चलने वाले ही को घेर लेती है। अल्लाह ताला सुब्हान अल्लाह कहा कि इन्होंने जो घमंड करा है, एरोगेंस करा है, बुरी चालें चली, अल्लाह कहा कि बुरी चाल वाले को घेरती है। मक्का वाले जो चाल चले थे, फतह मक्का ने दिखा दिया कि तुम्हारी बुरी चाल तुम्हें घेर लेंगी। उनकी डिफीट हो गई फतह मक्का में, अल्लाह ने ही दिखा दिया ना डिफीट। बनी उमाया ने जो हरकतें करी थी, 90 साल की हुकूमत चले गई और बनी अब्बास ने बदला ले लिया। बनी अब्बास ने जो जुल्म करे थे बाद में आए दूसरे लोग, उन्होंने तबाह तराज कर दिया। अल्लाह ताला जो बुरी चाल चलता है उसको यहीं जजा दे देता है। बाकी तो बात ठीक है, फिरौन को गर्क करा, जितने जालिमीन थे जो दुनिया में थे आज सब इस दुनिया से चले गए, चंगेज चले गया, उसको अपने आमाल का बदला देना, नाम और निशान मिट जाते हैं। तो बुरी चाल चलने वालों को यहीं पर, बुरी चाल तो उसके चलने वाले को घेर लेती। अल्लाह कहता है सो ये अग्नों की रविश के सिवा और चीज के मुंतजर नहीं है, यानी ये भी उसी चीज से मुंतजर है जो अग्नों के साथ हुआ था। क्या हुआ था, अब अल्लाह बता अग्नों के साथ क्या हुआ था। लिहाजा आप अल्लाह की इस तरीके को कभी बदलता हुआ ना पाएंगे, यानी अल्लाह का तरीका कभी बदलता नहीं है। क्या मतलब तरीका नहीं बदलता अल्लाह का, क्या किसी ने बुरी चाल करी तो उसको बुरा बदला मिल के रहेगा, ये अल्लाह का तरीका कभी बदलेगा नहीं। आगे अल्लाह ने क्या कहा, और ना ही आप खुदा के कानून को मुंतकिल होता पाएंगे। ना दूसरी क्या बात है कि अल्लाह का कानून मुंतकिल नहीं होता है। क्या मुंतकिल का क्या मतलब है कि चाल तो एक शख्स ने बुरी चली और अल्लाह दूसरे को अजाब दे, नहीं ये मुंतकिल नहीं होगा। जिसने बुरी चाल चली है उसी को बुरा बदला मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने बात साफ कर दी। तो आज कितने शयातीन हैं दुनिया में जो बुरी चालें चल रहे हैं, इनके सारे मकर खत्म होने वाले हैं। अभी सब देख रहे ताबूत की हार चौतरफ होना शुरू हो गई है, जब बोल आएंगे तो पूरे खत्म हो जाएंगे। ये सब जो फितने हैं खत्म होने वाले हैं। ये मोमिन के लिए इस वक्त आजमाने का वक्त है, हमको चाहिए कि हम अपने ईमान को साबित रखें, साबित कदम रहें, कुरान की होश तलावत करें, तफक्कुर करें, बच्चों के साथ बैठे कुरान पढ़ें, अकेले नहीं पढ़ें। बच्चे हैं आपके 10 साल का 5 साल का बिठा लें कि बेटा चलो कुरान पढ़ते हैं, उसकी तफसील बैठ के पढ़ते हैं। आप सोचते हैं कि आपके बच्चों को मस्जिद का मौलवी सिखाएगा, नहीं नहीं, वो मस्जिद के मौलवी के पास आप हो सकता है वीकेंड एक बार जाएं, या हो सकता है कि महीने एक बार जाएं, आप दूर रहते हैं मस्जिद से। आपको अपने बच्चे को कुरान सिखाना है, आपको उसको बैठ के तफसीर सिखाना है, आपको उसको बैठ के अल्लाह दिखाना है। आप खुद देखेंगे अल्लाह, आप खुद तफसीर समझेंगे तो जूझा भी समझेगी और बच्चे भी समझेंगे। आप खुद ही नहीं समझ रहे हैं तो पूरा घर खत्म हो जाएगा, बगैर कुरान के सब खत्म है। सिर्फ आप सिर्फ सोचेंगे मैं चले गया, मैंने एक मजलिस अटेंड कर ली, मैंने एक जश्न अटेंड कर लिया, मेरी बख्शिश हो गई और मेरे बच्चे सही, तो ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि दिलों को साफ कुरान करता है, नफ्स को पाक कुरान करता है, जितने मेरे शकूक है कुरान दूर करता है। बच्चों में कितने सवालात होते हैं तौहीद के बारे में, महाद के बारे में, ये सवाल उसके जहन में घूमते रहते हैं। सिर्फ आप मंडली में चले गए, सवाल है ठीक है, लेकिन सारे जवाब तो अल्लाह देता है ना। अल्लाह हमारा परवरदिगार है, उसको मालूम है हमारे अंदर किससे वसवसे पैदा होते हैं, किससे सवाल है। अल्लाह सबका जवाब देता ना, शिफा यहाँ छुपी हुई ना। तो जब तक के घर में ये जो शिफा है इसको आप समझाएंगे नहीं, वो शिफा घर में आप बांटेंगे नहीं, तो बच्चों के दिल मुतमईन नहीं होंगे। इसीलिए जनरेशन जो आती है जो कुरान से दूर होती है, वो सिर्फ रिचुअल से जुड़ती है, वो बिल्कुल खोखली हो जाती है, बिल्कुल भटक जाती है। उसकी वजह यह कि चले तो गए मस्जिद लेकिन लेकिन नस पाक नहीं हुआ, सवाल के जवाब नहीं मिले। अल्लाह जानता है हमारे नस में कि क्या क्या सवाल होते हैं, अल्लाह सबका जवाब देता है ना। वो हमको ये काम घर में करना है। अवलम यसीरु फिल अर्द فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا। क्या उन्होंने जमीन में कभी सैर नहीं की कि वो देखते कि उनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ, जबकि वो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, और अल्लाह को कोई चीज आजीज करने वाले नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन में, बेशक वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। देख ले अल्लाह ने कहा पहले का क्या अंजाम हुआ, ये फिरौनियों ने जो बड़े बड़े जो पिरामिड बनाए थे, आज कोई सब बनाने वाला नहीं है, जो उनकी हुकूमत थी, जो उनकी ऐश और अय्याशी थी, आज भी ऐसे लोग नहीं है। उसके बाद उनका क्या अंजाम हुआ, जो भी उपास आए दुनिया में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रखे चले गई, खत्म हो गई, कोई भी डरा 100 साल साथ कोई नहीं ठहरती। ब्रिटिश एम्पायर थी 200 साल चली, इसके बाद खत्म हुई होगी, अब इंग्लैंड इतना सा बचा है, ये सब का ही होने वाला, तो सबका अंजाम है अल्लाह ने कहा। और अल्लाह को ना आप आजिज कर सकते ना जमीन पे ना आसमान पे, ना तो अल्लाह को आप आजिज नहीं कर पाएंगे। आपका जो आमालनामा लिखा गया है, आपके आपके गुनाह की वजह से जो आपके रूह पे जो असर हुआ है वो हो गया, बस वो आप उसको लेके जाने वाले हैं। जो असरात जो रूह पे हुए हैं अल्लाह को आजिज नहीं कर पाएंगे गुनाह जो, जब तक के हम तौबा नसुहा ना कर लें, हमें जो असरात रूह पे हुए हमारे गुनाह के, जब तक तौबा नसुहा, मतलब कि वाकई हम क्रिया करें, वाकई हम पशेमान हो जाए, वाकई हम अपने आप को जलील और ख्वार करने अल्लाह के सामने ज्यादा काम करें, ज्यादा अल्लाह की राह में जद्दोजहद करें, तब तक वो जो दाग पड़ गए वो साफ नहीं होने वाले। अल्लाह को आप आजिज नहीं कर सकते, हम खुद आजिज हो जाते हैं अल्लाह के सामने, उसको नहीं कर सकते। कल हमको जाना अल्लाह के सामने। इन्हु काना अलीमन कदीरा, अल्लाह अलीम भी कदीर भी, हमारे हरकतों पर फरिश्ते हर चीज लिखते हैं। फिर अल्लाह ने क्या कहा आखिरी आयत है, वला यू आखुजुल्लाहु नास बिमा कसबु मा तरक अला ज़हरी हा मिन दाबतिन वलाकिन यू अखिरहुम इला अजलिन मुसम्मा फइदा जाअ अजलहुम फइन्नल्लाह काना बि इबादिही बसीरा। और अगर खुदा बंदे आलम लोगों को उनके आमाल की वजह से पकड़ता तो रूहे जमीन में कोई किसी चलने वाले को जानदार को न छोड़ता, मगर वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक के लिए मोहलत देता है, फिर जब उनका मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों के बारे में खूब बसीरत रखता है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला का अगर मैं ये मोहलत न देता अपने बंदों को जो तो जमीन पे एक चलने वाले को फिरने को नहीं छोड़ता इंसान को, उसको वही सजा दे देता, वही सजा दे देता। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक वक्त तक के लिए मुद्दत के लिए मोहलत देता हूँ जिस दिन हिसाब किताब का दिन होगा। या दो मोहलत है, एक तो मौत आ गई मोहलत खत्म, मौत आ गई मोहलत खत्म, दूसरा है कि या फिर जिनकी मौत नहीं आई आज कयामत आ गई तो उनके लिए वो मोहलत खत्म, तो ही मोहलत बची इंसान की। कहा कि जब तक मैं वरना मैं किसी को नहीं छोड़ता, अल्लाह सबके गुनाह को जानता। कहा कि जब आ जाएगा वह तो अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों को देख रहा है, तो जजा और सजा तो मिल के रहने वाली है। मोमिनीन हमको चाहिए कि हम कयामत से बहुत ज़्यादा खौफ करें। यह कयामत के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है किताबों में, अल्लाह सरकार ने तो बार बार कहा कि कयामत के वक्त के बारे में सिवाय अल्लाह के जो इल्म नहीं है, हमको बहुत डरना चाहिए अल्लाह सुब्हान तआला कि कयामत आने वाली है, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। मोमिनीन कयामत से कुरान में दो चीज़ों का कसरत से जिक्र है, मोमिनीन अल्लाह की तौहीद का और कयामत का। हम कोई जिस कसरत से उसका जिक्र है तो ही तो कयामत का वो हमारे रूह में आ जाना चाहिए। दो चीज़ें तो ही तो कयामत कि अल्लाह सुबहान तआला हमारा अइमा तो शहीद होकर चले गए ताकि इस दुनिया में अदला दुनिया ने छोड़ा नहीं, सरकार ने आगे खबर दे दी, अब हम पे कोई तेरी हुज्जत बची नहीं है, अब हमको तो ही ये है कि हमको तेरे सामने पहले दिन खड़ा होना है हमारे अमाल लेके। तो मैंने अल्लाह से बहुत गिरिया करा करा करें, बहुत गिरिया करा करे करें और सोचा करा करें कयामत दिन कितना बड़ा कयामत दिन होगा, तो हमारे साथ क्या होने वाला है, जितना आप और हम खौफ करेंगे अल्लाह की रहमत उतनी आने वाली है इंशाअल्लाह। उसकी रहमत से नाम भी ना होना लेकिन खौफ रखे ताकि रहमत बरसे। खौफ होगा तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारी जुजा को भी सिखाएंगे, हम कुरान सिखाएंगे, हम अहले बैत की सुन्नत बताएंगे, मौला के आने का इंतज़ार करेंगे, मौला की नुसरत करेंगे, इमाम हसन के दुश्मनों से बदला लेंगे। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।